एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने जा रहे हैं, रिचर्ड पावर्स का दी ओवर स्टोरी।
हाँ, जिसे 2019 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था।
बिल्कुल, पावर्स अमेरिकी साहित्य में एक काफी अलग आवाज है। वो विज्ञान, तकनीक, कला, इतिहास, इन सबको अपनी कहानियों में बड़ी खूबसूरती से मिलाते हैं।
और उन्हें मैकआर्थर जीनियस ग्रांट भी मिला है, जो कोई छोटी बात नहीं है।
सही कहा। दी ओवर स्टोरी जो 2018 में आया, उनका 12वां उपन्यास है और इसने समकालीन साहित्य पर, खासतौर पर इको फिक्शन यानी पारिस्थितिक कथा साहित्य जिसे कहते हैं, उस पर बहुत गहरा असर डाला है।
और कहते हैं इसके पीछे की प्रेरणा भी बड़ी दिलचस्प है। पावर्स कैलिफोर्निया के रेडवुड जंगल गए थे।
हाँ, मैंने भी पढ़ा था।
और वहाँ के विशाल पेड़ों को देखकर उन्हें लगा कि शायद हम कहानियाँ गलत तरीके से कह रहे हैं, मतलब हमेशा इंसान को केंद्र में रखकर।
बिल्कुल, तो उन्होंने कोशिश की कि इस उपन्यास में पेड़ सिर्फ बैकग्राउंड ना हो, सिर्फ प्रतीक ना हो,
बल्कि मुख्य किरदार हो।
जी, और ये ऐसे समय में आया जब हम सब पर्यावरण संकट, वनों की कटाई, इन चीजों को लेकर बहुत चिंतित हैं।
हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है आज भी।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे, द ओवर स्टोरी की कहानी, इसके कई सारे किरदार, उनकी यात्राएं और वो गहरे सवाल जो ये उपन्यास उठाता है।
और ये भी देखेंगे कि ये कैसे प्रकृति और इंसान के रिश्ते पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है।
शुरू कहाँ से करें? शायद उपन्यास की बनावट से। वो अपने आप में अनोखी है।
हाँ, वो पेड़ वाली संरचना, जड़ें, तना, शिखर और बीज, रूट्स, ट्रंक, क्राउन, सीड्स।
हाँ, और ये सिर्फ नाम नहीं है अध्यायों के, ये कहानी कहने के तरीके को, उसके विकास को दर्शाते हैं।
बिल्कुल, एक रूपक तिकरा।
सही, और उपन्यास का जो मूल विचार है वो हमारी इसी सोच को चुनौती देता है कि हम इंसान इस दुनिया के केंद्र में है, मालिक है।
हाँ, कि सब कुछ हमारे लिए ही है।
पावर्स पूछते हैं, क्या हो अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर हम मालिक नहीं बल्कि जीवन के इस विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का बस एक छोटा सा हिस्सा हो? तो उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो एक तरफ तो आधुनिक समाज की लालची मशीन है जो जंगलों को सिर्फ एक संसाधन, एक रिसोर्स मानती है,
और दूसरी तरफ पेड़ों की वो धीमी, खामोश लेकिन गहरी और समझदार दुनिया।
सही, और इस संघर्ष को हम देखते हैं 9 अलग अलग किरदारों की जिंदगियों के जरिए।
9 अमेरिकी जिनकी जिंदगी किसी न किसी तरह पेड़ों से जुड़ी हुई है, और उनके अपने अनुभव, जो कभी दर्द भरे हैं कभी चमत्कारी, उन्हें अमेरिका के प्रशांत नॉर्थवेस्ट इलाके के जो बचे खुचे पुराने जंगल हैं उन्हें बचाने की मुहिम में एक साथ ले आते हैं।
उनकी यात्राएं अलग अलग शुरू होती हैं पर फिर मिल जाती हैं।
हाँ, एक सामूहिक सक्रियता में बदल जाती हैं। उसमें दोस्ती है, प्यार है, टकराव है, बलिदान है, सब कुछ है।
और इन सब के बीच एक बुनियादी सवाल है जो उपन्यास बार बार पूछता है, क्या हम इंसान, जो उस दुनिया के प्रति इतने अंधे हो गए हैं जो हमें जिंदा रखती है, क्या हम सब कुछ खत्म होने से पहले फिर से देखना सीख सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है।
चलिए किरदारों से मिलते हैं, शायद उनकी कहानियों में कुछ जवाब मिले।
हाँ, शुरू करते हैं पैट्रिशिया वेस्टफोर्ड से।
पैट्रिशिया, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही होनहार युवा वनस्पति शास्त्री के रूप में, और वो एक क्रांतिकारी खोज करती है
कि पेड़ आपस में बात करते।
हाँ, कि वो सिर्फ अकेले नहीं है, वो संवाद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो जटिल समुदाय बनाकर रहते हैं।
सोचिए उस समय के वैज्ञानिक जगत में कैसा हंगामा मचा होगा।
मजाक उड़ाया गया उनका, उन्हें दशकों तक अकेडमिक दुनिया से बाहर रहना पड़ा अकेले।
पैट्रिशिया एक तरह से उपन्यास की वैज्ञानिक और नैतिक रीढ़ है। उसकी कहानी दिखाती है कि सच को सामने लाने के लिए कितना धीरज चाहिए, खासकर वो सच जो हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता हो।
और विज्ञान कैसे धीरे धीरे काम करता है।
हाँ, बाद में उनके काम को पहचान मिलती है, उनकी किताब द सीक्रेट फॉरेस्ट बहुत मशहूर होती है, लेकिन काफी देर से, काफी नुकसान के बाद।
दुनिया अक्सर देर से जागती है।
फिर आते हैं ओलिविया वैंडेग्रिफ और निकोलस होल। ये दोनों आंदोलन के दिल की धड़कन जैसे बन जाते हैं।
ओलिविया एक बेफिक्र कॉलेज स्टूडेंट, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है एक बिजली के झटके से, मौत के मुंह से वापस आकर।
उसे पेड़ों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
हाँ, उसे उनकी चेतना महसूस होती है और वो उन्हें बचाने के मिशन पर निकल पड़ती है एकदम जुनून के साथ।
और निकोलस?
निकोलस होल, वो एक ऐसे खानदान का आखिरी वारिस है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही अमेरिकी चेस्टनट पेड़ की तस्वीरें खींची हैं, एक पेड़ जो अब लगभग खत्म हो चुकी प्रजाति का है।
तो ओलिविया का वो तीव्र जुनून और निकोलस का अपने विरासत के प्रति वो शांत समर्पण, ये दोनों मिलकर उन्हें आंदोलन का आध्यात्मिक और भावनात्मक केंद्र बनाते हैं।
लेकिन उनकी कहानी सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि कैसे गहरा विश्वास कभी कभी कट्टरता का रूप ले लेता है, प्यार कैसे बलिदान मांगता है, और कैसे अच्छे इरादों का अंत भी दुखद हो सकता है।
उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
हाँ। अच्छा, फिर दो और किरदार हैं जो थोड़े ज्यादा यथार्थवादी लगते हैं, मिमी माँ और डगलस पॉलिसेक।
मिमी एक चीनी अमेरिकी इंजीनियर, उसके पिता ने उसे बचपन में एक शहतूत के पेड़ का सम्मान करना सिखाया था,
उसे एक जिंदा हस्ती मानना,
और जब वो पेड़ काट दिया जाता है
तो उसके अंदर जैसे न्याय की एक आग जल उठती है, वो इसे व्यक्तिगत लेती है।
और डगलस,
वो वियतनाम युद्ध का सिपाही है।
हाँ, डगलस पॉलिसेक लड़ाई में एक विशाल बरगद के पेड़ ने उसे गिरने से, शायद मरने से बचाया था, तो वो पेड़ों का कर्ज महसूस करता है।
तो मिमी और डडिस उन लोगों जैसे हैं जो व्यक्तिगत नुकसान या कर्ज की भावना से इस लड़ाई में आते हैं। वे आंदोलन में एक तरह की व्यावहारिकता, शायद थोड़ा संदेह भी लाते हैं।
हाँ, ओलिविया के आदर्शवाद के सामने वो सवाल उठाते हैं, जमीनी हकीकत याद दिलाते हैं।
उनकी कहानी बताती है कि कैसे निजी दुख एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन सकता है।
फिर एक बहुत ही दिलचस्प किरदार है एडम एपिच।
हाँ, मनोविज्ञानी।
जी, सामाजिक मनोवैज्ञानिक। वो इन पर्यावरण कार्यकर्ताओं का अध्ययन करने आता है, ये समझने कि लोग इतने अतार्किक क्यों हो जाते हैं, पेड़ों से बात करना, उनके लिए जान देना।
लेकिन होता उल्टा है।
हाँ, जैसे जैसे वो उनके साथ वक्त बिताता है, उसे लगता है कि शायद इन कार्यकर्ताओं का पागलपन बाहरी दुनिया के विनाशकारी तर्क से कहीं ज्यादा समझदारी भरा है।
एडम का किरदार अहम है। वो उस बौद्धिक दर्शक जैसा है जो तटस्थ रहना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे खिंचता चला जाता है
और भागीदार बन जाता है।
हाँ, अनिच्छा से ही सही, उसकी कहानी अकादमिक तटस्थता और नैतिक जिम्मेदारी के बीच का तनाव दिखाती है। क्या सिर्फ समझना काफी है या शामिल होना जरूरी है, और शामिल होने की कीमत क्या है?
और एडम को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
थोड़ा अलग हटकर रे ब्रिंकमैन और डोरोथी कैजाली की कहानी है।
वो शादीशुदा जोड़ा जो हर सालगिरह पर एक पेड़ लगाता है।
हाँ, उनकी कहानी में हम उनके प्यार को बढ़ते देखते हैं, और साथ ही उनके लगाए पेड़ों को धीरे धीरे एक छोटे जंगल में बदलते हुए।
वे आम नागरिक हैं, हम जैसे घरेलू गवाह कह सकते हैं।
उनकी कहानी छोटे लगातार किए जाने वाले अच्छे कामों की ताकत तो दिखाती है,
लेकिन शायद उनकी सीमाओं को भी।
बिल्कुल, बड़ी तबाही के सामने ये छोटे कदम कितने काफी हैं, और वे पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते, किनारे पर रहते हैं, इसमें एक उदासी भी है।
और आखिर में नीले मेहता,
कंप्यूटर जीनियस।
हाँ, बचपन में पेड़ से गिरकर लकवाग्रस्त हो गया था, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कमाल का है। वो पेड़ों के बढ़ने फैलने के तर्क से प्रेरित होकर मास्टरी नाम का एक बहुत बड़ा वीडियो गेम बनाता है,
जो दुनिया भर में हिट हो जाता है।
नीले की कहानी दूसरों से अलग है, वो शारीरिक रूप से आंदोलन में नहीं है,
लेकिन उसकी यात्रा भी उसी दिशा में है। वो तकनीक का इस्तेमाल करता है एक आभासी दुनिया बनाने के लिए, जो शायद इंसानों को वो सबक सिखा सके जो असली दुनिया में हम भूल गए हैं, जुड़ाव, धीरज, लंबी सोच।
तो वो दिखाता है कि जागरूकता फैलाने के, बदलाव लाने के कई रास्ते हो सकते हैं।
हाँ, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या वर्चुअल दुनिया का सबक असल दुनिया को बचा सकता है?
खैर, ये सारे किरदार,
इन सब के बिखरी हुई जिंदगियां उपन्यास के दूसरे भाग ट्रंक यानी तना में आकर जुड़ती हैं।
हाँ, पहला भाग रूट्स यानी जड़ें तो उनकी पृष्ठभूमि थी, निकोलस के परिवार की तस्वीरें, मिमी के पिता की सीख, डगलस का बचाव, पेट्रिशिया की रिसर्च, ओलिविया का वो बिजली का झटका, एडम की अकादमिक रुचि, नीले का गिरना, और रे और डोरोथी का पहला पेड़, ये सब मिलकर कहानी की नींव रखते हैं, जैसे जड़ें।
और फिर तना बनता है।
बिल्कुल, ट्रंक में ओलिविया, निकोलस, मिमी, डगलस, एडम, ये सब प्रशांत नॉर्थ वेस्ट के प्राचीन रेडवुड जंगलों को बचाने के लिए चल रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो जाते हैं।
और उनका वो बड़ा कारनामा, मिमास नाम के विशाल पेड़ पर रहना।
हाँ, मिमास, 1000 साल पुराना रेडवुड। वे लगभग 1 साल तक उस पेड़ की ऊंची डालियों पर बने प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, दुनिया का ध्यान खींचने के लिए।
वो हिस्सा पढ़ते हुए अद्भुत भी लगता है और तनाव भरा भी,
लेकिन उसका अंत त्रासदी में होता है। विरोध का एक एक्शन गलत हो जाता है, भयानक आग लगती है, और उनके एक साथी की मौत हो जाती है,
और वो समूह टूट जाता है।
हाँ, उन्हें भागना पड़ता है। ये उपन्यास सक्रियता के आदर्शवादी पहलू के साथ साथ उसके खतरनाक और नैतिक रूप से जटिल पहलुओं को दिखाने से भी नहीं कतराता।
कोई आसान जवाब नहीं देता कि सही तरीका क्या है।
बिखराव के बाद के सालों को दिखाता है, पात्र अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं।
ओलिविया का क्या होता है?
उसका अंत रहस्यमय और दुखद है। निकोलस गुस्से और दुख में भूमिगत हो जाता है और ज्यादा हिंसक रास्ते अपना लेता है, जिसे लोग इको आतंकवाद कहते हैं। मिमी का मुंह भंग हो जाता है। वो एक ऐसी नौकरी करने लगती है जो उसके पुराने आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ है। डगलस शांति से पेड़ लगाने का काम जारी रखता है। एडम जेल चला जाता है।
लेकिन इसी दौर में पेट्रिशिया की किताब छपती है, उसे मान्यता मिलती है।
हाँ, और निलय का गेम मास्टरी पूरी दुनिया में छा जाता है।
तो यहाँ सफलता और विफलता, आशा और निराशा सब साथ साथ चलते हैं, कोई एक सीधा नतीजा नहीं है।
सही कहा। और फिर आता है चौथा और आखिरी भाग, सीड्स यानी बीज,
उपसंहार जैसा।
हाँ, कई दशक बाद की दुनिया। दुनिया बदली नहीं है, जंगलों का कटना जारी है, संकट गहरा गया है।
लेकिन
कहानी ये भी दिखाती है कि उन पात्रों के संघर्षों के, उनके बलिदानों के बीज कहीं ना कहीं बोए जा चुके हैं। शायद उनका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन वो मौजूद हैं,
जैसे हवा में उड़े बीज।
बिल्कुल। पेट्रिशिया मरने से पहले अपना आखिरी संदेश देती है। एडम जेल से छूटकर पढ़ाने लगता है, शायद नई पीढ़ी को जगाने के लिए। निक अपने आखिरी काम को अंजाम देता है। अंत खुला हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई है।
ये संरचना ही कहानी के संदेश को पुख्ता करती है। जीवन सीधा नहीं है, ये चक्रों में चलता है, पेड़ों की तरह। अब अगर हम मुख्य विषयों पर आएं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है शायद वो अंतर संबंध बनाम इंसानी व्यक्तिवाद का।
हाँ, जंगल कैसे एक सहकारी व्यवस्था है, वो वुड वाइड वेब।
हाँ, वो फंगल नेटवर्क्स जिसके जरिए पेड़ जानकारी और संसाधन साझा करते हैं, एक तरह का भूमिगत इंटरनेट।
और इसकी तुलना आज के इंसानी समाज के अलगाव और प्रतिस्पर्धा से की गई है।
उपन्यास का मूल तर्क शायद यही है कि जिसे हम प्रकृति कहते हैं वो महज संसाधन नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुद्धिमान नेटवर्क है। हमारा अस्तित्व उसी पर निर्भर है। उसे अनदेखा करना मतलब अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है।
और इसी से जुड़ा है समय का नजरिया। इंसान सोचता है कुछ सालों या दशकों में,
जबकि पेड़ सदियों और हजारों सालों के पैमाने पर जीते हैं। ट्री टाइम में सोचना,
उपन्यास यही सीखने को कहता है।
हाँ, वो ओवर स्टोरी पर्सपेक्टिव, अपनी छोटी छोटी चिंताओं से ऊपर उठकर उस बड़ी पुरानी कहानी को देखना जिसका हम हिस्सा हैं।
और ये याद रखना कि जैसा उपन्यास में कहा गया है, ये हमारी दुनिया नहीं है जिसमें पेड़ हैं, ये पेड़ों की दुनिया है जहाँ इंसान अभी अभी पहुँचे हैं।
क्या लाइन है, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देती है।
कहानी कहने की ताकत भी एक अहम विषय है इसमें।
बिल्कुल, पेट्रिशिया के वैज्ञानिक तथ्य जरूरी है, पर जब तक वो कहानी का रूप नहीं लेते, दुनिया ध्यान नहीं देती। उपन्यास खुद इसका सबूत है।
हाँ, उसमें एक जगह कहा भी गया है
कि दुनिया के सबसे अच्छे तर्क किसी व्यक्ति का मन नहीं बदलेंगे, ऐसा करने वाली एकमात्र चीज एक अच्छी कहानी है।
पावर्स ने विज्ञान के तथ्यों को एक भावनात्मक कहानी में पिरोकर हमें उस तरह प्रभावित किया है जैसे शायद कोई रिपोर्ट न कर पाती।
और सक्रियता का चित्रण, वो भी बहुत ईमानदार है।
हाँ, शांतिपूर्ण विरोध से लेकर हिंसा तक, सफलता से निराशा तक, ये दिखाता है कि बदलाव की लड़ाई कितनी जटिल और दर्दनाक हो सकती है।
कोई आसान जवाब नहीं देता कि इस बड़े पैमाने पर हो रहे विनाश के सामने सार्थक प्रतिरोध क्या है।
सही कहा। और इन सब के मूल में है वो अंधापन और फिर से देखने का विचार।
उपन्यास कहता है कि आधुनिक इंसान जिंदा दुनिया के प्रति अंधा हो गया है। लगभग हर किरदार किसी न किसी झटके से गुजरता है, जिसके बाद वो प्रकृति को सचमुच देखना शुरू करता है।
तो क्या हमारा पारिस्थितिक संकट असल में हमारे नजरिए का संकट है?
शायद। क्या हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है? उपन्यास हमें ये भी याद दिलाता है विज्ञान के नजरिए से भी कि आप और आपके पिछवाड़े का पेड़ एक समान पूर्वज से आते हैं। आप एक दूर के चचेरे भाई हैं।
ये रिश्ता भूल जाना ही शायद सबसे बड़ी समस्या है।
पावर्स की भाषा और शैली भी कमाल की है।
हाँ, वो वैज्ञानिक सटीकता और काव्यात्मक भाषा का मिश्रण, पढ़ते हुए आश्चर्य भी होता है और ज्ञान भी मिलता है। विज्ञान यहाँ रहस्य को खत्म नहीं करता, बल्कि और गहरा कर देता है।
हाँ, और कहानी कहने का नजरिया भी बहुत व्यापक है। वो किरदारों के निजी अनुभवों से लेकर पृथ्वी के लंबे इतिहास तक आसानी से घूमता है। ऐसा लगता है कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं, पूरे जंगल की आवाज में कही जा रही हो।
इसे पढ़ना कैसा अनुभव रहा? मेरे लिए तो ये काफी झकझोरने वाला था।
हाँ, मेरे लिए भी।
एक तरफ पेड़ों की उस अद्भुत जटिल दुनिया के लिए गहरा सम्मान और विस्मय, और दूसरी तरफ इंसानों की किए विनाश और पात्रों के संघर्षों को देखकर दुख और गुस्सा।
ये आपको अपने आसपास के पेड़ों को, प्रकृति को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देता है।
आप कह सकते हैं कि यह पाठक के नज़रिए को फिर से संवारने की कोशिश करता है। वो भ्रम तोड़ता है कि हम प्रकृति से अलग हैं
और उस गहरे जुड़ाव को फिर से महसूस कराता है
और ये सवाल छोड़ जाता है कि इस गैर इंसानी दुनिया के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हम जीवन के इस विशाल ताने बाने का सम्मान कैसे कर सकते हैं।
ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा दे सकती है।
तो संक्षेप में कहें तो दी ओवर स्टोरी हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं।
और ये हमें चुनौती देता है कि हम अपने चारों ओर मौजूद उस विशाल धीमी गहरी बुद्धिमता को सुनना और इसका सम्मान करना सीखें,
जिसे हम अक्सर अपनी भागदौड़ में अनदेखा कर देते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।